पृष्ठ संख्या 96, अध्याय 8। दिल की बेचैनी में प्रमिला पागलों की तरह जाप पर झपटी। उसके रुग्ण मन को लगा जैसे उसे अवलंब मिल गया है। अब वह दर दर की ठोकरें नहीं खाएगी, शायद डगमगाएगी भी नहीं। घर की ओर पांव बढ़ाए चलती जाती और जाप से जुड़े तरह तरह के नियमों के बारे में सोचती जाती। जाप के दिनों में खट्टी चीजें खाना मना होता है। मैं तो केवल चाय पीती हूँ, घर में केवल चाय के लिए ही छंटाक भर दूध आता है। जाप के दिनों में नीची नज़र करके चलते हैं, किसी के चेहरे की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। जाप के दिनों में शीशा देखने की भी मनाही होती है। डॉट डॉट। प्रमिला अब सारा वक्त जीवन की ओर देखती रहती, गाढ़े का सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े रहती जिसमें सिर के बाल और आधा माथा तक ढके रहते। जो नीचे की ओर देखते रहो तो भगवान खुश होते हैं, क्योंकि इस तरह से मनुष्य में दम्भ नहीं रहता। जाप करते समय मन स्वच्छ होना चाहिए। वह बार बार मन ही मन कहती, मैं नहा धोकर बैठ जाया करूँगी और गायत्री का जाप किया करूँगी। गायत्री की महिमा उसने पहले भी किसी उपदेशक के मुँह से सुनी थी, जब एक बार वह अपनी माँ के साथ किसी मंदिर में कथा सुनने गई थी। उपदेशक ने सभी श्रोताओं से कहा था कि गायत्री मंत्र का उच्चारण उसके साथ साथ करें। इस मंत्र में सभी प्रार्थनाओं का सार है। उपदेशक ने कहा था, बोलो मेरे पीछे ओम डॉट डॉट डॉट, और मंदिर में बैठे सभी लोगों ने हाथ जोड़कर उपदेशक के पीछे पीछे गायत्री मंत्र दोहराया था, ओम भूर्भुवस्सः डॉट डॉट, और एक के बाद एक उसने 3 बार गायत्री का जाप करवाया था। इससे सब क्लेश दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप करने वाले पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है, उपदेशक ने मंत्र की महिमा बताते हुए कहा था। प्रमिला की माँ भी जाप किया करती थी। वह माला हाथ में लेकर जाप किया करती थी जिसके 108 मड़के थे। मुँह सिर ढांप लेती और अलग थलग छज्जे के एक कोने में बैठ जाया करती थी। क्या माँ को भी ऐसी ही किसी स्थिति का सामना करना पड़ा था? माँ कभी भी मुँह से कुछ नहीं कहती थी। क्या किसी जमाने में पिता जी भी किसी अन्य लड़की के चक्कर में थे? पिताजी की ढीली पगड़ी और बटुए जैसा पोपला मुँह प्रमिला की आँखों के सामने आ गया। निरीह सा, निरीह और कुरूप, ऐसे आदमी के लिए भी क्या माँ को जाप करना पड़ा था? इतने दुबले पतले दीनहीन आदमी का मन जीत पाने के लिए भी? पृष्ठ संख्या 97। उसका मन खिन्न हो उठा। माँ ने कितनी बार जाप किया होगा? 1,00,000 बार? और तब पिताजी माँ के पास लौट आए होंगे क्या? सचमुच टेढ़ा चलते हुए सफ़ेद फ्रेम का चश्मा लगाए, ढीली सी पगड़ी पहने, घिसी एड़ियों वाले जूते घसीटते हुए माँ के पास लौट आए थे? 1,000 सोचने पर भी प्रमिला यह कल्पना नहीं कर पाई जवानी के दिनों में उसके पिताजी कैसे रहे होंगे। पर उसके पिता ने माँ को घर से निकाला तो नहीं था? इस बात में तो पिताजी अच्छे थे। माँ घर से निकलकर केवल अस्पताल में ही गई थी मरने के लिए। तब माँ की उम्र 25 वर्ष की रही होगी। माँ के मरने के एक दिन पहले प्रमिला के पिता प्रमिला और उसके भाई को माँ से मिलाने ले गए थे। नारंग साहब ने प्रमिला के भाई को गोद में उठा रखा था और प्रमिला बाप की उंगली पकड़े साथ साथ चली जा रही थी। तभी उन्होंने एक पुल पार किया था। पुल के नीचे पानी था और सफ़ेद सफ़ेद बतखें तैर रही थीं और प्रमिला उन्हें देखने के लिए रुक गई थी। फिर वह धूसर से रंग का दरवाज़ा पार करके एक लंबे चौड़े आंगन में आ गए थे जहाँ बड़े बड़े पेड़ थे और हरी घास। प्रमिला बार बार पीछे रह जाती थी। उसे लग रहा था जैसे हवा में सफ़ेद रंग की कोई चीज़ उड़ रही थी, जैसे कोई बड़ा सा जाला हो जो कभी नज़र आता और कभी आँखों से ओझल हो जाता हो। प्रमिला के पिताजी बार बार रुक जाते थे और प्रमिला को जल्दी जल्दी चलने को कहते थे। डॉट डॉट। सारा का सारा दृश्य प्रमिला की आँखों के सामने घूम गया। दूसरे दिन सुबह पौ फटने से पहले प्रमिला फिसलन भरे गुसलखाने में पहुँच गई और ठंडे जल से भरी बाल्टी को टोह टोह कर ढूंढ रही थी। जितना अधिक जल ठंडा होगा उतनी ही अधिक उसके मन को शांति मिलेगी और भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे। गुसलखाने के दरवाजे में चिटखनी नहीं थी। फर्श पर फिसलन और साबुन के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा रखा था। लगता था जब से माँ मरी थी गुसलखाने में किसी ने साबुन नहीं बदला था। प्रमिला नहाई और ठिठुरती हुई बाहर आ गई। गाढ़े की सलवार और कमीज के ऊपर उसने सफ़ेद गाढ़े का दुपट्टा ले रखा था। जब से चाची ने जाप की महिमा बताई थी वह सफ़ेद ओढ़नी ओढ़ने लगी थी। यही पाठ की पोशाक थी। नज़र नीची किए वह ठिठुरती हुई कमरे में आ गई। उसने ओढ़नी से आधा माथा ढक लिया, फिर अपने बिस्तर के नीचे से दरी निकाल कर उसे दोहरा किया और अपनी खाट के पास फर्श पर बिछा दिया। दरी पर पालथी मारकर बैठने से पहले प्रमिला धीरे धीरे चलती हुई अपनी पृष्ठ संख्या 98 पुरानी कोठरी की दहलीज पर जाकर खड़ी हो गई। जाप के समय कृष्ण महाराज का चित्र सामने होना चाहिए। माँ जब जाप करती थी तो कृष्ण भगवान का चित्र सामने टंगा रहता था। बेंत के बने हुए फ्रेम में वह चित्र लगा था। कृष्ण महाराज के होंठ बांसुरी पर लगे थे, कंठों पर हल्के प्याजी रंग का दुपट्टा था जो हवा में लहरा रहा था, और कमर में गहरे रंग का वस्त्र था, और पैर नाचने की सी मुद्रा में आड़े तिरछे रखे थे, और बर्फ से सफ़ेद रंग की एक गाय सुंदर सलोनी उनकी पीठ पीछे खड़ी थी और अपनी गर्दन घुमाकर कृष्ण महाराज के चेहरे की ओर देखे जा रही थी। सफ़ेद भरे भरे शरीर वाली गाय और भगवान के होठों पर सदा की भांति मुस्कान खेल रही थी। यह चित्र जरूर कोठरी में कहीं रखा होगा। वह उसे निकाल लाएगी और अपने सामने काले ट्रंक के ऊपर दीवार के सहारे रख देगी। पर प्रमिला दुविधा में पड़ गई। देर हुई जा रही है, इस समय नामालूम चित्र मिलेगा या नहीं। अभी पिताजी जाग जाएंगे, अंदर धूल मिट्टी होगी, हाथ और कपड़े मैले हो जाएंगे, फिर से नहाना पड़ेगा। पिताजी जाग गए तो सबसे पहले चाय मांगेंगे। जाग गई बेटी प्रमिला, वह अब बूढ़ों की तरह पुकारते हैं। जाग गई बेटी प्रमिला, जरा चाय तो बनाना। और उसे जाप पर से उठना पड़ेगा। वह चुपचाप लौट आई और दरी पर पालथी मारकर बैठ गई। दोनों हाथ गोदी में रख कर जोड़ दिए और आंखें मूंद ली। ओम भूर्भुवस्वः तत्विस्तवर्णेयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः प्रमिला के पतले पतले होंठ बुदबुदाए। आज मैं 100 बार जाप करूंगी, पूरे 100 बार जाप करूंगी, प्रमिला ने मन ही मन कहा। जाप करते समय माँ की उंगलियाँ कैसे हिलती थीं। माँ माला के मड़कों पर गिनती करती जाती थी। मैं कैसे गिनती करूँ? प्रमिला ने पपोटों पर गिनना शुरू किया। ओम भूर्भुवस्वः बुदबुदाते हुए प्रमिला ने अंगूठे का सिरा छोटी उंगली के निचले पपोटे पर रखा। ओम भूर्भुवस्वः दूसरी बार मंत्र पढ़ चुकने पर उसने अंगूठे को उठाकर बीच के पपोटे पर रख दिया। धीरे धीरे ओम शब्द पर दबाव पड़ने लगा और बाकी का हिस्सा रटी हुई गर्दान की तरह मुंह में से एक ही सांस में निकलने लगा। कैंची की तरह चलती हुई जुबान एक एक मंत्र को काट काट कर फेंकने लगी। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः 100 बार तो मिनटों में कर लूंगी, प्रमिला ने मन ही मन खुश होकर कहा। कल माँ की कोठरी देखूंगी, शायद कोई माला मिल जाए। उंगलियां अपने आप माला की गांठ पर पड़ जाया करेंगी तो पता चल जाया करेगा कि 100 पृष्ठ संख्या 99 8 बार जाप कर लिया, पपोटों पर गिरना नहीं पड़ेगा। ओम भूर्भुवस्वः गायत्री मंत्र बार बार बुदबुदाया जा रहा था। उसमें अब न शब्द था न श्वास, केवल होठ हिल रहे थे और नीचे अंगूठा यंत्रवत एक उंगली के पपोटे से दूसरी उंगली के पपोटे पर चलता हुआ बराबर गिनती किए जा रहा था। प्रमिला का मन उत्तेजित था, जल्दी से जल्दी 100 बार जाप कर डालना चाहती थी। वर्णेयम शब्द पर उसकी जवान तनिक रुकती, वरना वह मंत्र को और भी जल्दी बोल सकती थी। इसी लय में उसका सिर भी धीरे धीरे हिलने लगा था, आगे पीछे ओम भूर्भुवस्वः प्रमिला को लगा कि कोई ठोस चीज उसके हाथ में बनी रहेगी तो उसका संतुलन बना रहेगा, वह गिरेगी नहीं। भयंकर शून्य में निराश्रित सारा वक्त नीचे ही नीचे गिरती नहीं रहेगी। कल वह श्री कृष्ण महाराज का चित्र जरूर निकाल लाएगी। खाट के पायताने काले रंग के ट्रंक पर कपड़ा बिछाकर वह चित्र को उस पर रख देगी। कल से वह फूल भी श्री कृष्ण महाराज के चरणों में रखा करेगी और धूप भी जलाएगी। अगर उसे पीतल का छोटा सा धूपदान मिल गया तो वह भगवान की आरती भी उतारा करेगी। घर के इस कोने को मंदिर बना लेगी, घंटियां बजेंगी और धूप जलाकर वह कृष्ण महाराज की आरती उतारेगी। यों दाएं हाथ में पीतल का धूपदान उठाए वह खड़ी होकर उसे चित्र के इर्द गिर्द झुलाएगी, फिर घंटियां बजाएगी। जहां बैठा दे तुथी बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। बचपन में प्रमिला अपने पिता को ताली बजा बजा कर और आंखें बंद कर सिर हिला हिला कर मीरा का यह गीत गाते हुए सुना करती थी। वह भी वैसे ही किया करेगी। फिर फूलों की पंखुड़ियां भगवान के चरणों में अर्पण करेगी और गले में पल्ला डालकर सिर नवाकर दोनों हाथ जोड़ माथे से लगाकर कहेगी, हे भगवान, मैं तुम्हारी दासी प्रमिला आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर को टूटने से बचा लो। डॉट डॉट प्रमिला को लगा जैसे कमरे का कोना रोशनी से भर गया है और वहाँ फूल महकने लगे हैं। प्रमिला का मन इस कल्पना से उत्तेजित हो उठा था। जाप अभी भी बराबर चल रहा था पर प्रमिला गिनती से उखड़ उखड़ जाती थी। जाप का उच्चारण अभी यंत्रवत नहीं हो पाया था। अभी उसमें भावनाएं विघ्न डालने दौड़ आती थीं। जब यंत्रवत हो जाएगा तो प्रमिला की उत्तेजना भी शांत हो जाएगी। तब माथा भी नहीं तपेगा और उसे भास होने लगेगा कि वह मानसिक एकाग्रता के गंभीर चरण में प्रवेश कर गई है। मन की व्याकुलता कम होगी, मानसिक तनाव भी कम होगा। धीरे धीरे वह अपने मन का बोझ भगवान के कंधों पर डालती जाएगी और स्वयं स्वतंत्र हो जाएगी, हल्की होती जाएगी। तब अपने आप ही भगवान दया करेंगे, पृष्ठ संख्या 100 और उसकी साध पूरी कर देंगे। उसे लगा जैसे साध सचमुच पूरी होने लगी है। घर से दूर कहीं सड़क पर महेंद्र के पैर ठिठक गए हैं और वह उसकी ओर घूम गया है। ज्यों ज्यों वह मंत्र का उच्चारण करती जाती है महेंद्र उसकी ओर खींचता चला आ रहा है। वह और भी नजदीक आ रहा है पर पप्पू कहाँ है? धक से प्रमिला के मंत्र पाठ की श्रृंखला टूट गई और क्षण भर के लिए वह व्याकुल हो उठी। उसने भींच कर आंखें बंद कर ली और एकाग्रता से मंत्र पाठ करने लगी। अब की बार महेंद्र उसकी आंखों के सामने आया तो वह काले रंग का सूट पहने हुए था और पप्पू उसके साथ साथ उसका हाथ पकड़े दाएं हाथ की तर्जनी मुंह में दबाए धीरे धीरे चला आ रहा है। माँ कहाँ है? पप्पू ने पूछा। महेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रमिला का मन शंकित हो उठा। महेंद्र क्या उत्तर देगा? वह क्यों नहीं कहता कि वह उसकी माँ के पास जा रहे हैं? प्रमिला सुबक उठी। नहीं नहीं, वह मेरी ओर नहीं आ रहे हैं। पर मैं कहाँ हूँ? जब तक वे मेरे पास पहुँचेंगे मैं कहाँ होंगी? जिस रास्ते से महेंद्र पप्पू चले आ रहे थे वह प्रमिला को जाना पहचाना लगा। अभी पुल आएगा, पुल के नीचे पानी बह रहा होगा और उस पर बख्तें तैर रही होंगी। यह तो अस्पताल को जाने वाला रास्ता है, उसी अस्पताल को जिसमें उसकी माँ मरी थी। माँ के मरने के एक दिन पहले जब वह माँ से मिलने आए थे और वह रास्ता इतना बीहड़ नहीं लगा था, पर आज वह इतना चुपचाप सा क्यों लग रहा है? लगता है चीज़ों से उनका सार निकल चुका है, केवल उनके ढांचे बाकी रह गए हैं, निर्जीव निष्पंद। उस वातावरण में से माँ निकल गई थी। यही कुछ हुआ है और कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ। डॉट डॉट प्रमिला ने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। उसका दिल धक धक कर रहा था। अभी भी उसकी आंखों के सामने वह अटपटा सा दृश्य घूमे जा रहा था। कमरे में हल्का सा उजाला हो गया था। खिड़की के ऊपर शीशों पर फूटते प्रभात का हल्का सा प्रकाश पड़ रहा था और हरे लाल पीले शीशे चमकने लगे थे। छन छन कर हल्की सी रोशनी कोठरी में खुलने वाले दरवाजे की चौखट पर भी पड़ रही थी। प्रमिला को लगा जैसे वह वास्तविक संसार में लौट आई है, जैसे अभी तक वह किसी स्वप्न लोक में विचरती रही थी। खिड़की के बाहर चमेली की झाड़ी पर छोटे छोटे सफेद फूल खिल रहे थे। लगता था आसमान पर से तारे उतर कर झाड़ी पर बिखर गए हैं। गरीब नवाज, हे मालिक। साथ वाले कमरे में से आवाज आई, नारंग साहब जाग गए थे। पृष्ठ संख्या 101। हे गरीब नवाज, हे सच्चे मालिक। प्रमिला उठ खड़ी हुई, दरी उठाकर तह करते हुए उसे लगा जैसे सारा वक्त वह सपना देखती रही है। उसका मन अभी भी स्वप्न लोक में घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी वह पुल था जिसके नीचे हल्के हरे जल पर बतखें तैर रही थीं। प्रकाश भी था, घंटियां भी बज रही थीं, फूल भी महकते थे, पर गहरा अवसाद छाया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह 1 लाख बार गायत्री का जाप कैसे पूरा कर पाएगी। प्रमिला जब चाय बनाकर हाथ में चाय का गिलास थामे पिता के कमरे में गई तो नारंग साहब खाट पर बैठे थे और बार बार शरीर को खुजला रहे थे। कभी सिर खुजलाते थे तो कभी तोंद। मैले से रूमाल से नारंग साहब ने चाय का गिलास दोनों हाथों में ले लिया और धीरे धीरे चम्मच के साथ एक एक घूंट चाय का मुंह में डालने लगे। हर बार चाय के गिलास में से नारंग साहब चम्मच भर कर निकालते तो उनकी उंगलियां कांपने सी लगती और चम्मच कांपता हुआ उनके मुंह तक जाता। प्रमिला को लगता जैसे चम्मच में से चाय उछलकर नीचे गिर पड़ेगी। पिता की शिथिल उंगलियों को देखकर उसका दिल पसीज उठा। तो तुमने फिर क्या सोचा है? अपनी छोटी छोटी आंखों से प्रमिला की ओर देखते हुए नारंग साहब ने पूछा। प्रमिला सामने खड़ी फर्श की ओर देखे जा रही थी, फिर उसके मुंह से निकल गया, मैं सुबह उठकर गायत्री का जाप करती रही हूँ, अब से रोज किया करूँगी। फिर पिता की ओर देखकर बड़े आग्रह से बोली, पिताजी, माँ के पास कृष्ण जी की एक तस्वीर हुआ करती थी ना, फ्रेम में मढ़ी हुई, आपको याद है? वह कहाँ रखी है? पिता की छोटी छोटी आंखें उसके चेहरे पर लगी थीं। क्या बोले जा रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब कुछ दे रही हो। प्रमिला चुप हो गई और स्तब्ध सी पिता के चेहरे की ओर देखने लगी। जाप की योजना गत रात जितनी सच्ची और सारभूत जान पड़ती थी, दिन के उजाले में पिता के सामने वह उतनी ही ज्यादा बचकाना और निरर्थक जान पड़ने लगी थी। वकील साहब ने चाय का खाली गिलास तिपाई पर रख दिया। कुछ देर तक प्रमिला के चेहरे की ओर देखते रहे, फिर जम्भाई लेकर उठे। जाप वाप में क्या रखा है, इनसे क्या होता है, फिजूल की बात है। तुम बैठकर जाप करो और मैं अदालत की खाक छानू। पृष्ठ संख्या 102। और सिर झटक कर गुसलखाने की ओर बढ़ गए। प्रमिला को लगा जैसे वह कोई अपराध करती पकड़ी गई है। दरी पर बैठी वह जाप का आनंद लेती रही है, जबकि समस्या का सारा बोझ अपने पिता पर डाले रही है। बचपन में भी उसे ऐसा ही अपराध का बोध हुआ करता था, जब वह कमरे में एक कोने में गुड़ियों से खेल रही होती और पिता डांट कर उठा देते, जाओ प्रमिला, रसोई घर में माँ की मदद करो, तुम जानती हो वह बीमार है और तुम इधर बैठी खेल रही हो। प्रमिला का मन खिन्न हो उठा। वास्तविक संसार में बड़ा क्षोभ था। दिल को 24 घंटे चाटते रहने वाली चिंता थी और एक प्रकार की अनिश्चितता जिसमें व्यक्ति सारा वक्त डोलता सा रहता था। संभल कर चलने वाले को भी ठोकरें लगती रहती थी। मनुष्य सोचता है कि सपाट साफ सुथरी सड़क पर चल रहा है, पर वास्तव में वहाँ पत्थर और कांटे और खपचियाँ बिखरी रहती हैं जिनसे अकारण ही पैर छिलते रहते हैं। यह बात जाप की दुनिया में नहीं है। जाप बच्चों के खेल की तरह है, बाहर की सुध बुध भूल कर उसमें मन लगा रहता है। बच्चे खेलते हैं तो उनका भी चेहरा दमकने लगता है। मिट्टी के घरौंदे वह भी उसी तरह सजाते हैं जैसे भक्त फूलों से मूर्ति के चरणों को सजाता रहता है। बाहर उजाला हो गया था पर कमरे के अंदर अभी भी झुटपुटा सा था। गुसलखाने में से लौटकर नारंग साहब ने बेटी के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, अपने अपने विश्वास की बात है बेटी, अगर तुम्हें जाप में विश्वास है तो जरूर किया कर। मैंने बिना सोचे समझे बात कह दी। जाप से मन में एकाग्रता आती है, एक तरह की ताकत मिलती है। प्रमिला का दिल डूबने सा लगा। उसे लगा जैसे अंदर ही अंदर कुछ भुरभुराने लगा है और हाथ पैर शिथिल पड़ रहे हैं। जब भी कभी कोई बात बनने की बजाय बिगड़ने लगती और उसका मन शंकित हो उठता तो उसके हाथ पर ठंडे पड़ने लगते। आप ही बताएं मैं क्या करूं, प्रमिला ने धीमी आवाज में पिता से कहा। नारंग साहब फिर खाट पर बैठ गए। यों हाथ पर हाथ रखे बैठ जाने से तो कुछ नहीं होगा ना, मेरी हड्डियां तो बूढ़ी हो चुकी हैं। अब तुम जवान लोग अपने मामले नहीं संभालोगे तो मैं कहाँ तक संभाल पाऊंगा। प्रमिला ने गहरा लंबा सांस खींचा। पृष्ठ संख्या 103। कचहरियों के मामले बड़े टेढ़े होते हैं, मैं अब भी चाहता हूँ सुलह सफाई से कोई फैसला हो जाए, कोई समझौता कर लो। अगर रुपए पैसे से मामला सुलझता हो तो मैं यह घर महेंद्र के नाम लिख देता हूँ। मेरे पास और है ही क्या? प्रमिला चुप रहे। नारंग साहब फिर बुदबुदाए, मानो अपने आप से बातें कर रहे हों। तुम उसकी बहन से जाकर मिलो, वह अपने भाई को समझाए। ऐसी बड़ी बात क्या है आखिर? वह कुछ नहीं कहेगी, वह सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। नारंग साहब उठकर टहलने लगे, दोनों हाथ पीठ पीछे रखे वह कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक टहलते रहे। फिर कमरे के बीचों बीच रुककर बोले, अभी वक्त है, समझौता हो जाए तो अच्छा है। तभी अनायास ही प्रमिला को लगा कि संभव है कुछ बातें ऐसी भी हों जिन्हें उसका बाप नहीं समझ पाता, कि जीवन की गति में उसका बाप पीछे छूट गया है। सुनो, नारंग साहब ने कहा। प्रमिला ने आंखें ऊपर उठाई। तुम उसकी बहन से कहो कि अगर महेंद्र तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो घर के बीचों बीच दीवार खींच दे, एक ओर तुम रहो दूसरी ओर वह रहे, बच्चे को खुली छुट्टी हो, वह दोनों ओर जा आ सके। तुम कभी भी उस ओर नहीं जाओ, महेंद्र का मन आए तो वह तुम्हारी ओर आए, मन आए तो नहीं आए। ... प्रमिला बाप के चेहरे की ओर देखती हुई सुनती रही। उसकी बहन से कहो कि यह बात भाई के कान में डाले, कचहरी में वह भी नहीं जाना चाहता, हम भी नहीं जाना चाहते। अदालत अगर अलग हो जाने की इजाज़त भी दे दे तो खर्च तो उसे देना पड़ेगा, और बच्चा भी माँ ले सकती है। इस तरह से मामला सुलझ जाएगा, तेरा भी घर बना रहेगा और वह भी जैसे चाहता है वैसे रह सकेगा, बेटा भी दोनों के पास रहेगा। और नारंग साहब सिर हिलाकर फिर टहलने लगे। यह तजवीज बुरी नहीं है, उसे मान जाना चाहिए। हमारे रिश्ते में एक आदमी ने ऐसे ही किया था, दीवार खींच दी थी, माँ बाप अलग हो गए थे पर बच्चे दोनों के पास बने रहे। वह टहलते हुए बुदबुदाए। प्रमिला के दिल में गहरी ठेस सी उठी, उसकी आँखों के सामने एक दीवार खींच गई, अलंग्य सपाट दीवार, जेलखाने की दीवार जैसी। किस तरह यह पृष्ठ संख्या 104 दीवार खींचेगी? दीवार भयावह थी, बीहड़ थी, पर धीरे धीरे उसके पीछे उसे अपने पप्पू की किलकारियां सुनाई देने लगी। पप्पू खाट पर खड़ा कूद रहा था। प्रमिला को दीवार बुरी नहीं लगी। मैं समझूंगी, मैं अंधी हो गई हूँ, पप्पू को देख नहीं सकती पर उसकी आवाज़ तो सुन सकती हूँ। मैं दीवार के साथ लगकर बैठ जाया करूँगी और पप्पू की आवाज़ सुनती रहा करूँगी। ... पर वह सिर हिलाकर बोली, वह नहीं मानेंगे जी, वह बच्चे को मुझसे अलग रखना चाहते हैं। वह कहते हैं मुझे बच्चे पालना नहीं आता। पप्पू सवाल पूछता है तो मैं उस ठीक से उसे जवाब नहीं दे सकती। वह कहते हैं पप्पू का दिमाग साइंस की ओर है, वह चांद सितारों के बारे में सवाल पूछता है। मैं अनपढ़ उसे क्या जवाब दूँ? वह उसे बोर्डिंग में ही रखना चाहते हैं, कहते हैं घर के मुकाबले में बोर्डिंग ज़्यादा अच्छा है। फिर सहसा प्रमिला ने बिफर कर कहा, आपने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? मैं भी अच्छी पढ़ लिख गई होती तो कुछ कर सकती थी, पप्पू को अपने पास रख सकती थी। क्यों, 10 जमातें पढ़ी हो, लड़कियों के लिए यही कुछ होता है और क्या? 10वीं जमात को कौन पूछता है? मैं 20 जगह नौकरी के लिए ठोकरे खा चुकी हूँ, 30 रुपए से ज़्यादा की नौकरी कहीं नहीं मिलती। औरतें पढ़ लिख गई हैं इसीलिए घर बर्बाद हो रहे हैं। टहलते टहलते ही नारंग साहब बोले। प्रमिला सुनकर क्षुब्ध हो उठी पर मुंह से कुछ नहीं बोली। अपने पिता की झुकी हुई पीठ की ओर देखते हुए फिर एक बार उसके मन में यही विचार कौन गया कि जिसे वह ज्ञान का भंडार और शक्ति का अच्छा स्रोत समझे बैठी थी वह तो करीब करीब अपाहिज बन चुका है। ...